आस्तिक की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई, क्योंकि इस समय उसके सामने अरुणिमा सच में एक ट्रांसपेरेंट नाइटी में खड़ी थी, लेकिन उसने ऊपर से एक शॉल ओढ़ रखा था। अरुणिमा को ऐसे देखकर आस्तिक के चेहरे की मुस्कान गहरी हो गई। वो अंदर आया और दरवाजा लगा दिया। अरुणिमा को पता था कि आस्तिक कमरे में जरूर आएगा, और अगर उसने उसको नाइटी में नहीं देखा तो वो फिर से उसके कपड़े फाड़कर जबरदस्ती उसे नाइटी पहनाएगा। इसीलिए ये सब होने से पहले ही अरुणिमा ने खुद ही नाइटी पहनने का डिसीजन ले लिया। हालांकि वो ये नहीं करना चाहती थी, लेकिन अभी अभी थोड़ी देर पहले नीचे जो उसने देखा था उसके बाद तो उसका मन चिल्ला चिल्ला कर रोने का कर रहा था। लेकिन वो जानती है कि वो सिर्फ राजा साहब के हाथों की बनी महज एक कठपुतली है, इसके अलावा वो और कुछ भी नहीं है। अगर वो किसी भी चीज़ के लिए रोती है या विलाप करती है तो उसका हर जाना उसे सजा के रूप में मिलेगा। आस्तिक अपने कोट का बटन खोलते हुए अरुणिमा के पास आने लगा। अरुणिमा के हाथ पैर कांप रहे थे जैसे जैसे वो उसके पास आ रहा था। आस्तिक अरुणिमा के पास आया और उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपने करीब कर लिया। अरुणिमा का चेहरा झुका हुआ था और उसके चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था। आस्तिक तिरछी मुस्कान के साथ अरुणिमा के गालों पर झुकने लगा और उसके कान के पास आते हुए बोला, मेरी भूख बढ़ रही है, तुम अपने आप को मेरे लिए तैयार करो, मैं बस थोड़ी देर में आता हूँ। आस्तिक अरुणिमा को छोड़कर बाथरूम चला गया। वहीं अरुणिमा अभी भी वहां पर खड़ी खड़ी डर से कांप रही थी। उसे आस्तिक के शब्द अच्छी तरह से महसूस हो रहे थे। उसे पता चल रहा था कि दो हफ्तों की अपनी भड़ास आस्तिक किस तरीके से निकालेगा। बाथरूम से निकलकर आस्तिक सीधा सोफे पर आकर बैठ गया और अपने सामने एक शराब की बोतल खोल ली। टेबल पर रखे रिमोट को उठाकर उसने सामने लगा म्यूजिक सिस्टम ऑन कर दिया और तभी उसमें से एक आइटम सॉन्ग बजने लगा। यूं तो प्रेमी 77 हमारे, ले जा तू कर 77 इशारे, दिल मेरा मुफ्त का। आस्तिक शराब को गिलास में डालकर उसे धीरे धीरे पिए जा रहा था और अरुणिमा को मदहोशी के साथ देखे जा रहा था। अरुणिमा को पता था कि उसे क्या करना है। उसने धीरे धीरे अपना स्टॉल हटाया और आस्तिक के सामने आकर खड़ी हो गई। उसने अपने हाथ हिलाकर डांस करना शुरू कर दिया। अरुणिमा की आंखों में आंसू आ गए थे। एक तरफ तो उसे आस्तिक का ये व्यवहार बर्दाश्त करना था और दूसरी तरफ उसे आस्तिक का किसी और लड़की के साथ देखना था। अरुणिमा अपने ही दिमाग में इन दो चीज़ों में जंग लड़ रही थी। तभी गाना खत्म होता है और आस्तिक अपना आखिरी जाम खत्म करते हुए सोफे से उठकर खड़ा हुआ। वो अरुणिमा के पास आया और उसका हाथ पकड़कर उसे बेड पर धकेल देता है। उसकी इस हरकत से अरुणिमा डर जाती है। आस्तिक अपनी शर्ट के बटन खोलते हुए बेड के ऊपर अरुणिमा के पास आया। अरुणिमा डर से पीछे खिसकने लगी तो आस्तिक ने उसके पैरों को पकड़कर उसे अपने करीब कर लिया। अरुणिमा का पूरा चेहरा डर से भर गया और लाल होने लगा। आस्तिक अरुणिमा के गालों पर अपनी पकड़ बनाते हुए गुस्से में उसे देखने लगा और बोला, पार्टी में तो बहुत हंस हंस कर बात कर रही थी, किसी को इम्प्रेस कर रही थी, किसे अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रही थी, उस रजत को। अरुणिमा धीरे से अपना चेहरा नामे हिलाते हुए बोली, नहीं राजा साहब, आप गलत समझ रहे हैं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। आस्तिक ने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, कुछ भी नहीं किया है, मुझे बेवकूफ समझा है क्या? तुम्हें क्या लगता है, मुझे दिखाई नहीं देता कि तुम अपनी ये नदाओं में किसको लुभा रही थी? मैं काफी नहीं पढ़ता हूँ क्या तुम्हें, या मैं कोई कमी छोड़ देता हूँ? अरुणिमा घबराहट के साथ अपना चेहरा नामे हिलाने लगी। आस्तिक ने अरुणिमा को ऐसे घबराते हुए देखा तो उसकी कमर पर अपनी पकड़ बनाते हुए बोला, क्या बात है रानी साहिबा, चेहरे पर यह घबराहट किस लिए है? जब उस रजत से या पृथ्वी से बात करती हो तब तो चेहरे पर यह घबराहट नहीं दिखाई देती है। पृथ्वी का नाम आते ही अरुणिमा हैरानी से आस्तिक को देखने लगी और बोली, नहीं राजा साहब, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं, मैंने कुछ भी नहीं किया है, आप मुझे उस गलती की सजा दे रहे हैं जो मैंने की ही नहीं है। आस्तिक अरुणिमा के दोनों हाथों को पकड़ते हुए ऊपर हेडरेस्ट से लगा दिया और गुस्से में उसे देखने लगा और बोला, अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो तुमको मेरे छूने से ये घबराहट क्यों होती है और मेरे बात करने से तुम्हारे चेहरे पर परेशानी क्यों झलकने लगती है? अरुणिमा के पास उसकी इस बात का कोई जवाब नहीं था। वो अभी भी चुप थी। वो कैसे बताती कि आस्तिक की आभाई ऐसी है कि उसके सामने आते ही अरुणिमा के हाथ पैर कांपने लगते हैं। आस्तिक ने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, आज के बाद अगर मैंने तुम्हें पृथ्वी के आसपास भी देख लिया तो याद रखना, अभी तक तो सिर्फ एक कमरे में तुम्हारा हश्र बुरा होता था, कहीं ऐसा ना हो कि महल के बीचों बीच तुम सबके लिए तमाशा बन जाओ। अरुणिमा ने डर से अपना चेहरा नीचे झुका लिया और हां में सिर हिला दिया। आस्तिक के चेहरे पर एक तिरछी मगर खतरनाक मुस्कान आ गई। उसने अरुणिमा का हाथ छोड़ दिया और उसके चेहरे को सहलाते हुए बोला, चलो बहुत हो गई बातें, अब काम करते हैं। इसी के साथ अरुणिमा के शरीर पर बचा हुआ वो एकमात्र कपड़े का टुकड़ा भी फटकर कहीं गिर जाता है। अरुणिमा की चीख फिर से उस कमरे में गूंज रही थी और आस्तिक की हैवानियत फिर से जग रही थी। दो हफ्तों की भड़ास आस्तिक ने किस तरीके से अरुणिमा के ऊपर उतारी थी ये तो बस अरुणिमा का वो अधमरा शरीर ही जानता था। हमेशा की तरह आस्तिक ने अरुणिमा का इस्तेमाल करके उसे जमीन पर फेंक दिया और अरुणिमा एक चादर के सहारे जमीन पर लिपटकर अपनी टूटी हुई किस्मत को समेटने लगी। अरुणिमा के शरीर पर जो गांव है वो तो फिर कुछ दिनों में भर जाएंगे, लेकिन उसके मन के गांव दिन ब दिन गहरे होते जा रहे थे। अरुणिमा ने सोच लिया था, वो अपनी माँ को दुनिया के सामने शर्मिंदा नहीं होने देगी, कोई उसकी माँ पर उंगली नहीं उठा सकता है और इसके लिए उसे चाहे तो सारी जिंदगी इस मॉन्स्टर के साथ ही क्यों न रहना पड़े, वो जरूर रहेगी। अगले दिन सुबह, महल का डाइनिंग टेबल, सब लोग बैठकर अपना अपना ब्रेकफास्ट कर रहे थे। अरुणिमा हमेशा की तरह जमीन पर बैठी हुई थी और उसके सामने चिकन यानी सोया चाप के टुकड़े परोसे गए थे।
वैसे तो अरुणिमा को पता था कि ये चिकन नहीं है और पृथ्वी ने भी उसे इस बात पर विश्वास दिलाया था क्योंकि वो खुद अरुणिमा को लेकर किचन में गया था और उसने दिखाया कि किस तरीके से उसके लिए ये सोया चाप बनाया जाता है। लेकिन इसकी बनावट कुछ इस तरीके से थी कि अरुणिमा को पहले कुछ दिन तो ये खाने में भी बहुत दिक्कत हुई थी। उसे एक बार के लिए ऐसा ही लग रहा था कि जैसे वो चिकन ही खा रही है और उसने एक बार तो उल्टी भी कर दी थी, पर अब धीरे धीरे उसे सोया चाप की आदत हो गई थी जिसे सब लोग चिकन समझते थे लेकिन अरुणिमा जानती थी कि ये सोया है। आस्तिक अपना नाश्ता करते हुए सबको देखने लगा और बोला, अमृता तैयार रही है।